نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. آج ہمارا گمنام کی ڈائری کا لاسٹ سیشن ہے. دیکھتے ہیں آج کے سیشن میں. آج تو سارا دن غنودگی میں گزرا. کچھ دیر کو ہوش آتا تھا, پھر واپس اسی حالت میں چلی جاتی تھی. اس دوران کون آیا کون گیا مجھے کچھ علم نہیں. اب تھوڑا سا ذرا ہوش آیا تو سامنے اپنے شوہر عاصم کو کھڑے دیکھا. وہ ایک ہفتہ پہلے جاب کے سلسلے میں باہر گئے تھے. مجھے جاگتا دیکھ کے بولے, میں آج ہی دوپہر واپس آیا ہوں, ایئرپورٹ سے سیدھا یہیں آ رہا ہوں. تم سو رہی تھی تو جگانا مناسب نہیں سمجھا. میں نے ہولے سے پوچھا, کیسے ہیں؟ بولے, ہاں سب ٹھیک ہے. مگر ان کے چہرے پر تو کچھ اور ہی تھا, بے پناہ اداسی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. وہ ہمیشہ بہت حوصلے سے رہتے تھے. شاید ڈاکٹر نے ان کو کوئی بات کہہ دی ہے. عاصم بہت ہی اچھے شوہر تھے, کبھی مجھے تنگ نہیں کیا تھا. اکثر ہی میں ہی ان پر کسی بات پر غصہ کر لیتی تھی. خاص کر ان کی عادت تھی کبھی بستر پر موزے چھوڑ جاتے, کبھی تولیہ زمین پر پھینک جاتے, کبھی جوتے کہیں رکھ دیتے. اور میں جو انتہائی صفائی پسند تھی, ہر وقت چیختی چلاتی پھرتی, یہاں پہ یہ کیوں رکھا, وہاں پہ یہ کیوں پھینکا. بھلا مجھے بھی اتنا اسٹرکٹ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر والوں کی جان کھائے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب بھی تو گھر نہ جانے کس حال میں پڑا ہوگا, کیا فرق پڑا. مگر اس وقت میرے اس چلانے سے سارے گھر کا ماحول خراب ہو جایا کرتا تھا. کبھی میں ان سے لڑ پڑتی تھی بیکار باتوں پر, حالانکہ زندگی تو اتنی مختصر تھی, پھر ان لڑائیوں کی گنجائش کہاں سے نکلتی تھی. کبھی کسی بات پر ناراضگی, کبھی کسی پر, کبھی کسی بات کو مائنڈ کر لینا, کبھی کسی بات پہ جھگڑا شروع کر دینا. اور اس وقت اپنی تمام باتیں اتنی لاجیکل لگتی تھیں کہ میں جو کوئی لڑ رہی ہوں تو ایسے ہی تو نہیں لڑ رہی, کوئی ریزن ہے اس کے پیچھے اور یہ ضروری ہے. مگر موت ایک ایسے ہر چیز کو غیر ضروری بنا دیتی ہے. ریزن کتنا ہی جینوئن ہو مگر ضرورت نہیں تھی ان لڑائیوں کی اس مختصر سی زندگی میں. پھر لڑائی کے بعد ہماری بول چال بند ہو جاتی تھی کچھ دن کے لیے, اور جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوتا تو اکثر عاصم ہی مناتے تھے. میری انا مجھے کبھی منانے پر نہیں دیا کرتی تھی. میں اکثر اپنی دوستوں کے شوہروں کی مثالیں دیتی تھی, دیکھیں وہ تو ایسے کرتے ہیں, فلاں کے شوہر تو اس کو گفٹ لا کے دیتے ہیں, وہ تو فلاں جگہ سیریں کراتے ہیں. اور عاصم کو اس بات سے بہت چڑ تھی کہ کیوں دوسروں کے ساتھ مقابلے کرتی ہو میرے. مگر میرے پاس یہی ایک حربہ تھا جسے میں اپنی باتیں منواتی تھی. کاش سمجھ جاتی کہ یہ زندگی کتنی چھوٹی ہے, اس میں لڑنے کا ٹائم نہیں ہے, کئی کئی دن ناراض رہنے کا, ایکسپلوئٹ کرنے کا, غصہ کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے. کیا جب ہمارے گھر میں کوئی پیارا آتا ہے وزٹ کرنے کے لیے تو ہم اس سے لڑتے ہیں؟ نہیں. یہ سوچ کر کہ جلدی اس نے چلے جانا ہے, اس کو پیار سے رکھتے ہیں, اس کی ناجائز باتیں بھی برداشت کر جاتے ہیں, اس سے ناراضگیاں نہیں دکھاتے چاہے وہ کتنی الٹی سیدھی باتیں کرے, اس پر چیختے چلاتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس ساری برداشت کے پیچھے ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوا, تھوڑے دن کا ہی تو مہمان ہے, پھر اس نے چلے جانا. کاش ہم زندگی کو بھی इसी तरह गुजारते हो, इस सोच के साथ कि हर एक ने चले जाना है। कोई भी रिश्ता हमेशा नहीं रहना, कोई भी ताल्लुक हमेशा का नहीं है, यहां जुदाइयां हैं। हाँ, कोई चंद दिन का मेहमान है यहां, कोई चंद साल का, कोई पहले चला जाने वाला है, कोई बाद में, मगर सभी ने जुदा हो जाना। फिर कहां से जवाब मिलता है इन तमाम झगड़ों का, जो बिल्कुल बेकार बातों पे होते हैं। आसिम आहिस्ता से मेरे करीब आकर कहने लगे, तुम कलमा पढ़ती रहा करो। उन्होंने अच्छा याद कराया, मुझे और जिक्र तो याद रह जाते थे मगर कलमा पढ़ना याद ही नहीं था। कभी कभी बातें पता भी होती हैं फिर भी जहन से निकल जाती हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे वुजू करवा दें, मैंने कमजोर सी आवाज में कहा। आसिम जल्दी से टब ढूंढने लगे जिससे मुझे वुजू करवाया करते थे। जब भी कोई घर से आता था मैं उनसे वुजू करवा लिया करती थी, क्योंकि जब मैं अकेली होती तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद करूं और ना ही कोई नर्सें वुजू करवा सकती थी। जब कोई भी नहीं होता तो तयम्मम से गुजारा कर लेती थी। जब से अस्पताल आई हूं बस जैसी तैसी नमाजें पढ़ती हूं, कभी लेट के कभी बैठ के इशारों से, फोन पर चलने वाली अजान से नमाज के वक्त का पता चल जाता है, वरना तो अस्पताल के इस कमरे में कहां पता चले। आसिम ने बड़ी मोहब्बत से मुझे वजू करवाया। मैंने इशारे से कहा मुझे उठाएं, उन्होंने मेरा बिस्तर ऊंचा कर दिया। मैंने तौबा के दो नफलों की नियत की और बड़े शौक से नफल अदा करने लगी। मैं चाहती हूँ जाते जाते भी मैं नमाज जरूर अदा कर जाऊं। अक्सर गनूदगी की वजह से अल्फाज भी सही से अदा नहीं होते, पता ही नहीं क्या पढ़ रही हूं, सही भी पढ़ रही हूं या नहीं। मगर हाँ, एक चीज जरूर अच्छी हुई है कि मेरी नमाज में ठहराव आ गया। कोई तेजी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, बड़े आराम से सुकून से पढ़ती हूँ, इसे कि अब मेरे पास वक्त ही वक्त है। कहीं जाने की जल्दी नहीं है। सेहत जब होती थी तो कहाँ ऐसी नमाज पढ़ी जाती थी, तब तो इंसान भाग भाग के पढ़ता है, क्योंकि नमाज के बाद बहुत सारे काम उसको करने होते हैं। आज मेरे सारे काम खत्म हो गए और आज मैं बहुत दिन के बाद बैठ के नमाज पढ़ रही हूं। पिछले कई दिन से तो लेटे हुए ही पढ़ रही थी। सलाम फेर कर आसिम को पास आने का इशारा किया। वो करीब आए तो हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुझे माफ कर दे। वो बोले, किस बात पर, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। मगर मैं जानती हूं मेरे क्या क्या कसूर हैं, मुझे सब याद है। और मैं ये भी जानती हूं कि अगर ये मुझसे राजी हो गए और इस हाल में मैं दुनिया से गई तो मेरी निजात हो सकती है। शौहर का क्या मकाम है, ये कई बार हमने तफसीर क्लास में पढ़ा था, मगर तब मैं बस एक दिन के लिए कुछ असर लेती थी और फिर पहले की तरह वही रूटीन शुरू कर देती थी। ये भी शुक्र है कि कुछ तो सीख लिया था उस क्लास के जरिए, उस वक्त उतना असर ना भी लिया मगर आज वो बातें बहुत काम आ रही हैं। मैंने फिर से अपनी बात को दोहराया, बस अब मुझे माफ कर दे। वो मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, अच्छा अच्छा चलो माफ कर दिया, तुम बिल्कुल स्ट्रेस ना लो और मेरे रोजों का फिदिया दे दें। अच्छा कितना, मैं सोच में पड़ गई, क्या बताऊं, मुझे तो खुद भी अंदाजा नहीं। मेरा जहन उलझ गया, वो मेरे चेहरे से समझ गए और बोले, अच्छा अच्छा दे दूंगा, तुम बस अब लेट जाओ, आज मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। बार बार सांस को जोर से खींचना पड़ता था और ये अमल ही मुझे बहुत थका रहा था। आसिम ने मेरा बिस्तर सीधा कर दिया और मुझसे कहने लगे, कुछ कहो, कुछ बोलो, तुम इतनी खामोश हो गई हो। मैं वाकई गुमसुम सी हो गई थी। मैंने नफी में सर हिलाया। मुझे लग रहा था सब बातें खत्म हो गई हैं, मेरे पास कुछ कहने को रह ही नहीं गया। इस बीमारी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। मेरी तेजी से चलने वाली जुबान को तो जैसे ताला ही लग गया। वाकई मौत का यकीन इंसान को चुप लगा देता है, उसकी चलती हुई जुबान को बंद कर देता है। ये बहुत बढ़ बढ़ के बातें करनी तभी आती हैं जब इंसान मौत को भूला हुआ होता है, जब आगे जाना याद नहीं होता। वरना मेरी तो सारा दिन जुबान मुंह में जाती ही नहीं थी। फजूल बोलते चले जाना, यही काम था। अब अव्वल तो हिम्मत ही नहीं, अगर हिम्मत होती भी तो यूं लगता है बोलने को कुछ रह ही नहीं गया। क्या कहूं, क्या बोलूं। जिंदगी की हकीकत समझ आ गई, इसका धोखा मेरे आगे खुल गया। अब क्या कहूं। जब से अब्बा को ख्वाब में देखा था, दिल को कुछ थोड़ी सी धारस बंधी है। यहां तो अल्लाह ने मुझे पैगाम भिजवाया है, या शायद सारा दिन मैं यही बातें सोचती रहती हूं, इसीलिए उसी तरह का ख्वाब भी आ गया। अब अल्लाह जाने क्या मामला है, ये तो आगे जाके ही पता चलेगा जब गैब के पर्दे उठेंगे कि मेरे साथ होने क्या वाला है। मुझे लेने पता नहीं कौन आएंगे, पता नहीं कोई नूरानी चेहरों वाले आएंगे या डरावनी शक्लों वाले, खुशखबरियां लाएंगे या कोई बुरी खबरें लाएंगे। कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। सुनते थे क्लास में कि कब्र हर एक को भींचती जरूर है, मुझे भींचेगी तो छोड़ेगी कब? उसी मुताबिक छोड़ेगी जैसे मेरा अमल होगा, क्योंकि हमारे नबी ने तो फरमाया है कि काफिर को उसकी कब्र इतनी जोर से भींचती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। अब पता नहीं ईमान वाले पे ये वक्त कैसा होता हो। मैंने आसिम से इशारे से कहा, सूरा रहमान लगा दें। इस सूरा को सुन के भी मुझे बड़ा ही सुकून मिलता था। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। वाकई हर एक को फना ही तो है। इस जिंदगी की ये सबसे बड़ी हकीकत है, कोई चीज भी बदल सकती है, टल सकती है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो पढ़ाई की प्लानिंग हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो मूविंग हो, चाहे वो बच्चे की पैदाइश हो, कुछ भी बदल सकता है। मगर एक चीज ऐसी है जो ना टल सकती है ना बदल सकती है, और वो मौत है, जो होके ही रहेगी। और मैं इतनी नादान थी कि सारी जिंदगी इसी से नजरें चुराती रही। इसका जिक्र करना अच्छा नहीं लगता था, डिप्रेशन लगता था, मजा खराब होता था, मनहूस बातें लगती थी ये। और जब इसका जिक्र ही ना करना चाहें, इसको याद ही ना करना चाहें, तो इसकी तैयारी कहाँ से करनी थी। तैयारी तो वही करता है जो रवानगी को याद रखता है। और जो कहता रहे जाने की बात ही ना करो, जाने का जिक्र भी ना करो, वो कहाँ बैग अपने बंद करेगा, वो कहाँ सामान को बांधेगा। दूसरों के जाने का सुनकर कुछ देर को दिल नरम होता था, मगर फिर जो ही वहां से उठती थी सारा असर खत्म हो जाता था। दुनिया के फिर वही झंझट, फिर वही खुदा फरामोशी, फिर वो यहाँ के मजे, यहाँ की एक्टिविटीज। और ऐसा नहीं था कि मेरा कोई प्लान ही नहीं था नेक बनने का, नहीं बिल्कुल। मैंने सोचा हुआ था मैं कुरान सीखूंगी, मैंने सोचा हुआ था मैं अपनी इस्लाह करूंगी, मैंने बहुत सारी नेकियां करने का सोचा हुआ था, मगर वो प्लान कल का था, कल कल कल, और वो कल कभी आई नहीं। उस कल के आने से पहले मेरा जाने का वक्त आ गया। मेरी सांस इतनी मुश्किल हो रही है, ऑक्सीजन भी लगी हुई है लेकिन लगता है सांस नहीं आ रहा। बातों की आवाज ने मेरी आंखें खोल दी, देखा मेरे सारे बच्चे कमरे में जमा हैं, आज सभी आ गए एक टाइम पर। हाय, मेरी वजह से मेरे बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, 6 महीने से अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं इनके। बच्चे मेरे बिस्तर के गिर्द खड़े थे, मॉम कैसी हैं आप, मेरे छोटे बेटे ने मुझे पुकारा, उसकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। मैंने सब बच्चों के चेहरों की तरफ नजर डाली, सब की शक्लें उतरी हुई थी, यूं लगता था बहुत रोए हुए हैं। उनके दुखी चेहरे देख के मेरा दिल कट गया, औलाद की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती थी, मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि इनकी आंखों में कभी आंसू आए, मैं खुद रो लूं मगर इनको रोते नहीं देख सकती। मैं बड़ी कोशिश से मुस्कुराई और सर हिलाया ये बताने के लिए कि मैं ठीक हूं, तुम दुखी ना हो। हाय अल्लाह, तूने मां का दिल कैसा बनाया। मां तो कभी भी नहीं चाहती कि उसकी औलाद को जरा भी तकलीफ हो, अगर मां का दिल ऐसा है तो है अल्लाह तू तो मां से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। तूने तो हम बंदों को तखलीक किया, तू कैसे बंदों की तकलीफ देख सकता है। मेरी छोटी बेटी गुड़िया मेरा हाथ पकड़कर बेख्तियार चूमती जा रही थी, उसके आंसू मेरे हाथों को भिगो रहे थे। मेरे बच्चे कितने दुखी हो रहे हैं मेरी वजह से, मेरे अंदर बोलने की ताकत नहीं थी मगर उनके आंसू देख के पता नहीं कहां से मुझ में हिम्मत आ गई और मैंने कहा बच्चों मत रो, तुम अच्छे मुसलमान बनना तो हम जन्नत में मिलेंगे। मैंने मुश्किल से जुमला अदा किया, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं थी बोलने की। गनूदगी से मेरे सोचने समझने की सलाहियत जा रही थी। अब मुझे आंखें खुली रखना भी मुश्किल लग रहा था। पता नहीं कब गनूदगी ऐसी छाई कि मुझे फिर कुछ होश नहीं कि क्या हुआ। ये थी आज की किस्त गुमनाम की डायरी की। अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कभी दोबारा इसकी और किस्तें लिखूंगी। असल बात आपसे पूछने की है कि इस डायरी से आपने क्या सीखा। ये सिर्फ हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। कोशिश इसमें यही की गई है कि हर उस चीज को टच कर लिया जाए जहां हमारे में अक्सर नेग्लिजेंस होती है, जहां इस्लाह की जरूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर इससे हम कुछ सीख के अपनी इस्लाह कर लें तो वो बेहतर है। ऐसा ना हो कि कहीं हमारा आखिरी वक्त भी पछतावों का और हसरतों का बन जाए। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।